नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है रीतिबद्ध काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि। रीतिकाल के काव्य का रीति के आधार पर रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य तीन वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं के बारे में तथा उसके प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जो रीति निरूपण के रूप में लिखा गया हो। संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे आचार्य कवियों का काव्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध काव्य कहते हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों में 57 कवियों का परिचय दिया है। रीतिबद्ध कवियों को सर्वांग रीति निरूपक तथा विशिष्टांग रीति निरूपक दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वांग रीति निरूपक कवियों की श्रेणी में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के रस, अलंकार, नायिका भेद आदि समस्त अंगों के लक्षणों का वर्णन किया है। काव्य के इन लक्षणों को अपनी कविता में सिद्ध करके दिखाया है। विशिष्टांग रीति निरूपक की श्रेणी में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी एक अंग के लक्षणों का वर्णन किया और उन्हें अपनी कविता में सिद्ध करके दिखाया है। रीतिकाल में जिस कविता की रचना राज दरबार में हुई उस पर राज दरबार का परिवेश पूरी तरह से हावी है। उस कविता के विषय वस्तु से लेकर उसके कलापक्ष में कवियों को उतनी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी जितनी साहित्य सृजन के लिए अनिवार्य है। यहाँ कवि अपनी रुचि से नहीं बल्कि अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुसार कवि कर्म का निर्वाह कर रहा है। कवि कर्म उसकी जीविका है। इस जीविका की घोषित अघोषित शर्तों में आश्रयदाता के दान, पराक्रम की अतिशोक्तिपूर्ण व चमत्कारिक वर्णन करना शामिल है। अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करना भी कवि के काम में शामिल है। इस सब के बीच कवियों के बीच प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाए रखना भी चुनौती है। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, चमत्कारिकता तथा आचार्यत्व रीतिकालीन दरबारों में रचे गए साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्रृंगारिक काव्य का आधार है नायक नायिका, विशेष तौर पर नायिका का नख सिख वर्णन इनका प्रिय विषय है। मानव शरीर को आधार बनाकर काव्य रचना करना निषिद्ध नहीं है, लेकिन रीतिकालीन नख सिख वर्णन रूढ़िबद्ध और अव्यक्तिक है। इसमें नायिका के रूप के मादक पक्ष ही प्रमुख तौर पर उभरे हैं। दरअसल आश्रयदाताओं को नारी के विलासात्मक रंगीले और भड़कीले चित्र तुष्ट करते थे। नारी का एक ही रूप उन्हें भाता था, विलासिनी प्रेमिका का। एकांगी दृष्टिकोण के कारण जीवन के सामाजिक पक्ष अनदेखे रहे। काव्यांगों को आधार बनाकर लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों की परिपाटी का निर्वाह किया। काव्यशास्त्रीय मौलिक उद्भावनाओं की यहाँ कमी जरूर खलती है। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कवि कर्म के अन्य पक्षों पर इतनी हावी है कि काव्य की स्वाभाविकता को समाप्त कर दिया है, बचा है केवल प्राणहीन व नीरस परंपरा निर्वाह। राज दरबार में रचे गए काव्य की अलंकार प्रधानता और चमत्कार पैदा करने की वाहवाही लूटने के लिए मुक्तक काव्य शैली अधिक अनुकूल थी। दोहा, कवित और सवैया छंदों को अपनाकर नाद तत्व का विधान किया। दोहा छंद का खूब विकास हुआ। दोहे की संक्षिप्तता में अद्भुत अर्थ भंगिमाएं देखने को मिली हैं। रीतिकाल के कवियों की मुख्य भाषा ब्रज है, यद्यपि अवधि में भी रचनाएं प्राप्त हुई हैं। ब्रज भाषा में निखार आया और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। आचार्य भिखारी दास ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध काव्य में जहाँ तहाँ भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ मिल जाती हैं, श्रृंगार के साथ साथ भक्ति की रचनाएँ भी हैं। भक्ति का श्रृंगारीकरण भी यहाँ दिखाई देता है। अब हम रीतिबद्ध कवियों के जीवन, उनके परिवेश व उनकी साहित्यिक क्षमता का परिचय प्राप्त करेंगे। केशवदास का जन्म 1555 में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित ओरछा नगर में हुआ माना जाता है। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह के ये आश्रय में रहे। इंद्रजीत सिंह ने उनको 21 गांव उपहार में दिए। वीर सिंह देव के आश्रय में भी ये रहे। केशवदास राजनीति, साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और वेदक आदि विषयों के ज्ञाता थे। केशवदास ने हिंदी में रीति अनुसार काव्य रचना आरंभ की थी। उन्होंने लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता। रसिक प्रिया में 9 रसों का परिचय दिया और श्रृंगार रस का विवेचन किया। केशवदास ओरछापति महाराज इंद्रजीत के दरबार में थे। वहाँ प्रवीण राय नामक गणिका थी, वह इनकी शिष्या थी, काव्य रचना सीखती थी। प्रवीण राय के लिए कवि प्रिया की इन्होंने रचना की थी। कवि प्रिया में काव्य दोषों, रीतियों, अलंकारों का वर्णन है। गोरो गात पाकरिन लोचन लमात मुख, उर उर्जातन की बात अवरोहिये, कहती बात फूल से झरत जात, ओठ अवदात राती रेख मन मोहिये, श्यामल कपूर धूर की ओढ़नी ओढ़ उड़ी, धूर ऐसी लागी कैसो उपमा न टोहिये, काम की दुल्ही सी काके कुल उल्ही, सुलहलही ललित लतासी लाल सोहिये। रसिक प्रिया में नायिका भेद का वर्णन भी किया गया है। केशव अलंकार को कविता के आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी कविता में चमत्कृत उक्तियाँ, उक्ति वैचित्र्य तथा अलंकारों की भरपूर मात्रा है। उनका मानना था कि अलंकार काव्य की शोभा है। जैसे आभूषण स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, वैसे ही कविता की शोभा अलंकारों से होती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनन विराजई कविता वनिता मित। केशवदास की रचनाओं की भाषा ब्रज है। बुंदेली और संस्कृत का प्रभाव उनकी भाषा पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। आचार्य मतिराम 1603 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बनपुर नामक स्थान पर जन्मे मतिराम आजीवन अनेक आश्रयदाताओं के संरक्षण में रहे। सम्राट जहांगीर के दरबार में रहे, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाडा के दरबार में दरबारी कवि रहे, स्वरूप सिंह बुंदेला तथा महाराज शंभनाथ सोलंकी के दरबार में भी ये कवि रहे। मतिराम ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अनेक प्रशस्तियाँ लिखी। सम्राट जहांगीर की आज्ञा से फूलमंजरी ग्रंथ की रचना की। राजा भाव सिंह के दरबार में रहकर अलंकार पंचाशिका व वृत्त कौमुदी और ललित ललाम की रचना की। मतिराम ने अपने आश्रयदाता के सम्मान में प्रशस्तियाँ लिखी। बूंदी नरेश भाव सिंह का यशोगान करते हुए मतिराम ने उनकी दानवीरता का वर्णन किया है। फूलमंजरी, लक्षणमंजरी, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, सतसई, वृत्त कौमुदी ये मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं। मतिराम का साहित्य प्राय राज्याश्रित ही रचा गया है। आचार्य मतिराम ने ललित ललाम में अलंकारों का विवेचन किया है। रसराज लक्षण ग्रंथ उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। इसमें श्रृंगार रस, उसके आलंबन, नायक नायिका के भेदों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। मतिराम ने नायिका भेद के वर्णन में नखशिख वर्णन करते हुए रूप सौंदर्य के परिवर्तित रूप का मोहक वर्णन किया है। उसके सुंदर गौर वर्णन के सामने कुंदन भी फीका लग रहा है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चरु गौराई, आंखिन में अलसान, चितौन में मंजू, विलासिन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लह मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, त्यों त्यों निकरे सी निकाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी स्वाभाविक और सुंदर भाषा के विषय में लिखा है, भाषा के समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं, न उसके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान में चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में वे नहीं पड़े हैं। दिन दिन दूनी संपत्ति बढ़त जात, ऐसो याको कहु कमला को बराबर है, हेम हाय हाथी हीर बक्सी अनूप निधि, भूपिन को करत बिखारिन को घर है, मतिराम और जायक जहान सब एक दाने सगु साल नंदन कोकर है, राव भाव सिंह के दान की बड़ाई देख, कहा काम छंद है काहुन सुत तरु है। देव ऋतिकाल के प्रतिनिधि कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था। देव एक ऐसे कवि थे जो किसी राज्यसभा में जमे नहीं, जगह जगह भटकते रहे, अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर कविताएं रची। इनके आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र और हिंदी कविता के प्रेमी आजम शाह भी थे। उनके आश्रयदाताओं में एक थे भोगीलाल, कविता के प्रशंसक थे। इन्होंने देव की कविता पर खुश होकर लाखों की संपत्ति दान दी। सन 1767 में उनकी मृत्यु हुई। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। इसमें रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है। भवानी दत्ता वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका की रचना की। जाति विलास नामक ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन करने की कोशिश की। देव आचार्य भी थे और कवि भी, लेकिन आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कवि देव ने श्रृंगार, रीति और वैराग्य भाव तीनों की रचना की। श्रृंगारिकता और अलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। देव के काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है, परंतु दरबारी प्रभाव से मुक्त होकर प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र भी उनकी कविता में हैं। देव ने परकीय नायिका से संबद्ध काव्य कम ही रचा। स्वकीय के वर्णन में वे बेजोड़ हैं। दंपत्ति दीप्ति प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति स्नेह निचोरी। देव के काव्य में रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोह तन छवि भारी दे, पवन झुलाव के की कीर बहराव, देव कोकिल हलाव हुलसाव कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो कर रायलोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जहरी जहरी झीनी बूंद है परत मानो, घर घर घटा घेरी है गगन में, आन कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंद मेरे आंसू हुए दृगन में। प्रेम में मन की चंचलता का वर्णन देखिए। मूर्ति जो मनमोहन की, मनमोहनी के थिर हुए थिर किसी, देव गोपाल को बोल सुन छतियाँ, सिय राति सुधा छिर किसी, नीखे झरोखे हवे झांक सके नहीं, नैनन लाज घटा घिर किसी, पूरन प्रीति ही है हिरकी खिरकी खिरकिन फिर फिरकी सी। देव ने राज दरबार का यथार्थ वर्णन किया है। इससे सत्ता केंद्रों की संस्कृति और दरबार के परिवेश का सहज ही अनुमान हो जाएगा। साहेब अंध मुसाहेब मूक, सभा बहरी रंग रीज को माचो, भूल्यो तहां भट क्यों भट ओ घट, बुढ़ीबे को कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो कहो समझायो न, बतायो सुनो न कहा रुचि राच्यो। देव ने समाज की स्थिति को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। सामाजिक विषमता के प्रति कोई आक्रोश तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका यथातथ्य वर्णन तो इसमें मिलता ही है। सामाजिक विषमता के बारे में उन्होंने लिखा कि है उपजे रज बीज हितें, बिन सेहूं सब छिति छार के छाड़े, एक से देख कछु न विशेख, जो एक उन्हार कुंभार के भांडे, तापर आपुन ऊंच हवे औरन नीच के पाए पुजावत चांडे, बेदन मूंद करी इन दूंदी सुसूद अपावन पावन पांडे। पद्माकर रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ। अवध बादशाह में सेना के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर के आश्रय में हिम्मत बहादुर विरोधावली नामक वीर रस की पुस्तक की रचना की। सितारा के महाराज रघुनाथ राव ने पद्माकर को एक हाथी, 1,00,000 रुपया और 10 गांव दिए। जयपुर के महाराज प्रताप सिंह और उनके पुत्र महाराज जगत सिंह के आश्रय में काफी समय तक रहे। उनके नाम पर प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। काव्य रसिकों के लिए जगत विनोद महत्वपूर्ण रहा है। जयपुर में ही दोहा छंद में पद्माभरण नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे और महाराणा साहब की आज्ञा से गनगौर के मेले का वर्णन किया था। ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सेंधिया के दरबार में भी गए और यह कवित पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो कहे पद्माकर कसक काश्मीर हु को पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो साज दिल पकरे फिरंगिन दबावे गो दिल्ली दहपट पटना हु को झपट कर कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। कहा जाता है कि वहाँ सरदार ऊदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बांदा आ गए। वृद्धावस्था में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। इसी दौरान प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। इसी दौरान अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की। सन 1833 में 80 साल की उम्र में कानपुर गंगा तट पर देहांत हो गया। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माभरण जगत विनोद राम रसायन गंगा लहरी आलिजा प्रकाश प्रताप सिंह विरुदावली प्रबोध पचासा ईश्वर पचीसी यमुना लहरी प्रताप सिंह सफरनामा भगवत पंचाशिका राजनीति कली पचीसी रायसा हितोपदेश अश्वमेध आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने शौर्य श्रृंगार प्रेम भक्ति राजदरबार की संपन्न गतिविधियों मेलों उत्सवों युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। पद्माकर की कविता में बुंदेलखंड के शौर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कविता में बुंदेलखंड का सौंदर्य और शौर्य जीवन का उत्सव बनकर आता है। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। पद्माकर की भाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। पद्माकर की कविता के उदाहरणों से उनकी काव्य शक्ति का सहज ही अनुमान हो जाएगा। होली के बारे में पद्माकर की कविताएं देखने लायक हैं। मस्ती उल्लास के जो चित्र पद्माकर ने खींचे हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। फाग की भीड़ अभीरन में गई गोवंदे ले गई भीतर गोरी भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी छीनी पितंबर कंबर तय सुविदा दई मीड कपोलन रोरी नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी तीखे तेग वाही जय सिलाही चढ़े घोड़न पे शाही चढ़े अमित अरिंदन की ऐल पे कहे पद्माकर निशान चढ़े हाथिन पे धूरी धार चढ़े पाक शासन के सैल पे साज चतुरंग चमु जंग जीतीबे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे लाली चढ़े मुख पे बहाली चढ़े बाहन पे काली चढ़े सिंह पे कपाली चढ़े बैल पे। पद्माकर ने राज दरबारों का वर्णन किया है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनिजन है चांदनी है चिक है चिरागन की माला है कहे पद्माकर जो गजक है गिजा है सजी सेज है सुराही है सुरा है और प्याली है शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला जिन्हें जिनके अधीन उते उदित मसाला है तान तुक ताला है विनोद के रसाला है सुबाला है दुशाला है विशाला चित्रशाला है। दोस्तों आज हमने पढ़ा रीतिबद्ध काव्य की प्रकृति एवं उसके कवियों के बारे में। अगले पाठ में हम जानेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।